रुकू नंबर 5 है 35 से 40, अल्लाह नूर है। अल्लाह नूर उस समावाती वल अर्द मसल नूरी ही कमिश्कातिन फी हमिस्बा, अल्लाह नूर आसमानों का और ज़मीन का, इसके नूर की मिसाल एक ताक के है जिस पर चिराग हो और चिराग शीशे की तरह कंदील में हो और शीशा मिसल चमकते हुए रोशन सितारे के हो। वो चिराग एक बाबरकत दरख्त जैतून के तेल से जलाया जाता हो, जो दरख्त ना मशरकी है ना मगरबी, खुद वो तेल करीब है कि आपकी रोशनी देने लगे अगर जैसे आग ना भी छुए। नूर अला नूर, नूर पर नूर है। अल्लाह अपने नूर की तरफ रहनुमाई करता है जिसे चाहे। लोगों के समझाने को ये मिसालें अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है और अल्लाह ताला हर चीज के हाल से बखूबी वाकिफ है। इसी आयत पर हर साल हम अपना नूरुला नूर कोर्स अनाउंस करते हैं। इन घरों में जिनके बुलंद करने और जिनमें अपने नाम की याद का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, वहां सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। ऐसे लोग, पहले तो मैं दुआ करूंगी कि आपके बेटे ऐसे हो जाए, आपके शौहर भाई, हम सब के मर्दों को अल्लाह ऐसा बना दे। और अभी रमजान से पहले के लेक्चर्स में हमने इस आयत पे बहुत डिटेल से बात की है। ऐसे लोग जिन्हें तिजारत और खरीदो फरोख्त अल्लाह के जिक्र से और नमाज कायम करने और ज़कात अदा करने से गाफिल नहीं करती, इस दिन से वो डरते हैं जिस दिन बहुत से दिल और बहुत सी आंखें उलट पुलट हो जाएंगी इस इरादे से कि अल्लाह इन्हें इनके अमाल का बेहतरीन बदला दे, बल्कि अपने फजल से और कुछ ज्यादती अता फरमाए। अल्लाह ताला जिसे चाहे बेशुमार रोजियां देता है और कुफार के अमाल मिसल इस चमकती हुई रेत के हैं जो चटियल मैदान में हो। सिराब मेराज, जिससे प्यासा दूर से पानी समझता है लेकिन जब इसके पास पहुंचता है तो इसे कुछ भी नहीं पाता। हाँ, अल्लाह को अपने पास पाता है जो इसका हिसाब पूरा पूरा चुका देता है, और अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब कर देने वाला है। अल्लाह हमारे आमाल को सराब बनने से बचाए। या मिसल इन अंधेरों के जो नहायत गहरे समंदर की तह में हो और जिसे ऊपर तले की मौजों ने ढांप रखा हो, फिर ऊपर से बादल छाए हुए हों। अलगरस अंधेरियां ही अंधेरियां हैं जो ऊपर तले पै दर पे हैं। जब अपना हाथ निकाले तो इसे भी करीब है कि ना देख सके, और बात यह है कि जिसे अल्लाह ही नूर ना दे उसके पास कोई रोशनी नहीं होती। पिछली आयत में अल्लाह नूर उस समावाती मसल नूरी ही का मिश्कात की बात हुई आयत 35 में, और यहाँ अंधेरों की बात है। ये है वो आयत जिससे आयते नूर कहते हैं, और इसी की वजह से अगर आप देखें तो इस सूरत का नाम भी सूरत नूर लग रहा है कि यहाँ नूर की बातें हैं। गस्से बसर के बाद आयते नूर क्यों आई, यानी मर्द और औरतें अपनी नजरों को झुका लें, इसके बाद ये आयत का आना आपको मुझे क्या सिखा रहा है कि इंसान जब हराम से बचता है तो इसको नूर हासिल होता है, फिर इसको ईमान की लज्जत और हलावत यानी मिठास नसीब होती है। यानी पहला काम आप कीजिए, अगले अल्लाह करवा देगा, और वो कह के अपनी नजरों को झुका। हम औरतों को भी मर्दों के सामने आंखों में आंखें डाल के नहीं बात करना। औरत को अल्लाह ताला ने छुपा हुआ रखा है, उसको अपनी निगाहों को और आंखों को भी झुका के रखना है। अपनी फितरत को नफसानी ख्वाहिशात से मसख नहीं करना, अपने दिल को कुरान के नूर से मुनव्वर रखना है, अपने दिलों और घरों को अल्लाह की याद का मरकज बनाना है। अल्लाह ताला आपके मेरे लिए इसको आसान करे। अब यहाँ तक सूरत नूर का वो हिस्सा पूरा हुआ जो औरत और मर्द के ताल्लुकात के अंदर की पाबंदियों से था। अब एक बड़ा खूबसूरत रुकू आ रहा है कि सिर्फ जमीन पे ही नूर नहीं है, फिजाओं में भी नूर है, कायनात में भी नूर है। तो अब कुछ चीजें कायनात से मुतल्लिक, यानी आपको मुझे अल्लाह ने कुछ अहकामात दिए मानो, लेकिन कायनात की कुछ मखलूकात ऐसी हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने उनकी शरीयत उनके दिमागों में डाल के दे दी, उन्हीं में से परिंदे और बादल और हवाओं की बातें पढ़ेंगे। देखिएगा रुकू नंबर 6 41 से 50, कायनात की चीजों में टीम वर्क है, ये है असल में इनकलाब। आप चाहते हैं पूरी दुनिया में खैर फैले तो उसका तरीका सुनिएगा। आयत क्या है, अलम तरन्नल्लाहु युसब्बिहु लहु मन फिस्समावाति वल अर्द, क्या आपने नहीं देखा कि आसमानों और जमीन की कुल मखलूक और पर फैलाए उड़ने वाले कुल परिंदे अल्लाह की तस्बीह में मशगूल हैं, हर एक की नमाज और तस्बीह उसे खूब मालूम है। लोग जो कुछ करें अल्लाह इससे बखूबी वाकिफ है। जमीन और आसमान की बादशाहत अल्लाह ही की है और अल्लाह ही की तरफ लौटना है। अगली मिसाल, क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह बादलों को चलाता है, फिर इन्हें मिलाता है, फिर इन्हें तह बतह कर देता है, फिर आप देखते हैं कि इनके दरमियान में से मीह बरसता है यानी रेनी, वही आसमानों की जानी बोलों के पहाड़ों में से ओले बरसाता है, फिर जिन्हें चाहे इनके पास इन्हें बरसाए और जिनसे चाहे इनसे इनको हटा दे। बादल ही से निकलने वाली बिजली की चमक ऐसी होती है वह अब आंखों की रोशनी ले चली। अल्लाह ताला ही दिन और रात को रद्दो बदल करता रहता है, आंखों वालों के लिए तो इसमें यकीनन बड़ी इबरतें हैं। तमाम के तमाम चलने फिरने वाले जानदारों को अल्लाह ने पानी ही से पैदा किया, पीछे भी ये बात आई थी यहाँ भी आ गई। इनमें से वास्तव अपने पेट के बल चलते हैं, कौन? रेप्टाइल्स, सांप और इसी तरह के कीड़े मकोड़े। बस दो पांव पर चलते हैं, कौन? मुर्गी और बतख, इंसान। बस चार पाए हैं, कौन से? बकरियां, गाय, भैंस, कैटल्स। अल्लाह ताला जो चाहता है पैदा करता है, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। इंसान की जिंदगी में सारे मरहले आते हैं। बच्चा पेट पे क्रॉल करता है, जरा सा बड़ा होता है तो हाथ पांव दे के वो बकरी की तरह चलता है, और दो पांव पे हम खड़े हैं। और कैसे सीधे खड़े हैं? अपने कद को आज जाके शीशे पे देखिएगा कि हम गिरते क्यों नहीं है। नीचे दो चप्पू रखे हुए, चप 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 चल रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, ये अल्लाह की शान है, उस पर गौर कीजिए। बिलाशुबा हमने रोशन और वाजे आयतें उतार दी हैं और अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह दिखा देता है। और कहते हैं कि अल्लाह ताला और रसूल पर ईमान लाए और फरमाबरदार हुए, फिर इनमें से एक फिरका इसके बाद भी फिर जाता है, ईमान वाले हैं ही नहीं। यानी अब इतने अहकाम सुनाकर अब आपको तस्लीम और रजा सिखाई जा रही है कि मान लो ना, क्यों फ्रिक्शन पैदा करते हो? कब तक? अगर हमें यकीन आए ना कि हमने 1 महीने के अंदर मर जाना है, तो हम इन सारे हुक्मों पे अमल कर लेंगे, ये मेरा यकीन है। बस ये अपने कुछ होने का एहसास, और पता नहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए, ये असल में हमें अल्लाह की बातों को सुन के भी मानने नहीं देता। जब ये इस बात की तरफ बुलाए जाते हैं कि अल्लाह और इसका रसूल इनके झगड़े चुका दे, तो भी इनकी एक जमात मुंह मोड़ने वाली बन जाती है। इज्तिमाई जिंदगी सिखाई जा रही है। हाँ, अगर इन्हीं को हक पहुंचता हो तो मती फरमाबरदार होकर इसी की तरफ चले आते हैं, यानी अपना बेनिफिट हो तो खुशी से इस्लाम की तरफ आते हैं, और जहां कुर्बानी देनी पड़े तो भागने लगते हैं। क्या इनके दिलों में बीमारी है, या ये शक और शुबे में पड़े हुए हैं, या इन्हें इस बात का डर है कि अल्लाह ताला और इसका रसूल इनकी हक तलफी करेगा? यानी इनको डाउट्स आ रहे हैं कि ये होगा और वो होगा और वो होगा। सोचिए, यानी इस बात का डर है कि अल्लाह ताला और इसका रसूल इनकी हक तलफी ना करे। बात यह है कि ये लोग खुद ही बड़े जालिम हैं। एक आयत ईमान से मुतल्लिक, 47 नूर, मुफाद परस्त लोगों का ईमान खोटा होता, यानी फायदों के हरीज, जहाँ फायदा हुआ तो ले लिया और मान लिया, और ना हुआ तो छोड़ दिया। फेथ इन एक्शन, अल्लाह ताला की निशानियों पे गौर करके अल्लाह की अजमत को माना, खालिक की तमाम मखलूकात की तरह हमें भी मुकम्मल इताअत करनी है। यानी कायनात सारी मुकम्मल मुस्लिम है तो तुम पार्ट टाइम मुस्लिम क्यों हो? और अब आगे सूरत का बैंड शुरू हो रहा है, रुकू 751 से 57, मोमिनों का तरसे अमल। दुआ कीजिए कि मेरा आपका नाम इसमें आ जाए। इन्नमा काना कौलल मोमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही। ईमान वालों का कौल तो ये है कि जब इन्हें इसलिए बुलाया जाता है कि अल्लाह और उसके रसूल इनमें फैसला कर दे, तो वो कहते हैं कि हमने सुना और मान लिया। आप भी कह दीजिए, समेना व ताना। यही लोग कामयाब होने वाले हैं। रिजल्ट भी आ गया आपका साथी। जो भी अल्लाह ताला की और इसके रसूल की फरमाबरदारी करें, खौफ इलाही रखें और इसके अजाबों से डरते रहें, वही निजात पाने वाले हैं। अब कुछ निफाक की बातें, जहां भी ऐसे काम आएंगे, कुछ दिल के खोटे लोगों की बात तो फिर भी जरूर आएगी। और वो क्या है? बड़ी पुख्तगी के साथ अल्लाह ताला की कस्में खा खा कर कहते हैं कि आपका हुक्म होते ही निकल खड़े होंगे। कह दीजिए पस कस्में ना खाओ। तुम्हारी इताअत की हकीकत हमें खूब मालूम है, यानी ये बड़ी बड़ी बातें करने से बेहतर है कि छोटे छोटे नेकियों के काम करने लग जाओ। अच्छा, फिर और क्या होगा? जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला इससे बाखबर है। कह दीजिए कि अल्लाह का हुक्म मानो, रसूलुल्लाह की इताअत करो, फिर भी अगर तुमने मुंह फेरा तो रसूल के जिम्मे तो सिर्फ वही है जो इस पर लाजिम कर दिया गया, और तुम पर इसकी जवाबदेही है जो तुम पर रखा गया। हिदायत तो तुम्हें उस वक्त मिलेगी जब रसूल की माँ तहती करो। ये है इनकलाब का नुक्ता, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। सुनो, रसूल के जिम्मे तो सिर्फ साफ साफ तौर पर पहुंचा देना है। तुम में से इन लोगों से जो ईमान लाए और नेक अमाल किए हैं, अल्लाह ताला वादा फरमा चुका कि इन्हें जरूर जमीन में खलीफा बनाएगा। ये है वो आयत। पूरे पारे का थीम इस आयत में छुपा हुआ है, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। गलबा इस्लाम और इनकलाब कब आएगा? जब लोगों में ये काम होंगे जो आयत 55 में है। सुनिएगा वो खूबियाँ, अपने अंदर से लेकर अपने बच्चों और अपने बड़ों और इन सारों की जिंदगियों में इसको पैदा करने की कोशिश करेंगे हम सब। और वो क्या है? नंबर एक, इनको खलीफा बनाएगा जैसे कि इनसे पहलों को खलीफा बनाएगा, वो जिसको अलामा इकबाल ने भी कहा ना कि सबक फिर पढ़ सदाकत का और शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। वो एग्जैक्टली साइड पे फिट हो रही है। और यकीनन इनके लिए इनके दीन को मजबूती के साथ मुहकम बना देगा जिसे इनके लिए वो पसंद फरमा चुका है, और इनके इस खौफो खतर को वो अमन अमान से बदल देगा। वो मेरी इबादत करेंगे, मेरे साथ किसी को भी शरीक न ठहराएंगे। इसके बाद भी जो लोग ना शुक्रिया और कुफर करें वो यकीनन फासिक हैं। क्या करो? नमाज की पाबंदी करो, जक़ात अदा करो, अल्लाह के रसूल की फरमा बरदारी में लगे रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये काम करिए, इससे इनकलाब आएगा। जिस उम्मत की 90% आबादी 5 वक्त की नमाज ना पढ़े, आप उससे क्या तवक्को करते हैं? ये अमर बिल मारूफ करेंगे, ये जिहाद करेंगे, या जाकर ये दूसरों को दीन सिखाएंगे और ये इनकलाब पैदा करेंगे? नहीं, कम अज कम इस सदी में तो भी हमें जलना कुड़ना। आगे एक नस्ल तैयार होगी, शायद अल्लाह करे कि इस सदी के अंत तक उम्मत मुस्लिमा बदल जाए। और जिस तेजी से अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम यूथ दीन की तरफ आ रही है, उम्मीद बहुत है। अल्लाह करे कि हम उनके रास्ते की रुकावट ना बने बल्कि उनको इसमें मजीद हेल्प आउट करें। फिर इसी तरह ये ख्याल आप कभी भी ना करना कि मुनकर लोग जमीन में इधर उधर भाग कर हमें हरा देने वाले हैं। इनका असली ठिकाना तो जहन्नुम है, जो यकीनन बहुत ही बुरा ठिकाना है। दो आयात ईमान से मुतल्लिक, नूर 51, मार्फत इलाही मिल जाए तो सब की बात छोटी और अल्लाह की बात बड़ी लगती है। और अल्लाह करे कि आपको मुझे ये मार्फत मिल जाए। यानी अल्लाह को पहचान लेते हैं ना तो लोग तो छोटे छोटे बोने बन जाते हैं। फिर नूर 55, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। आज से करेक्टर बिल्डिंग कर लीजिए अपनी नस्लों की, बच्चों की, मर्दों की। अल्लाह का ये वादा का पूरा होगा। मुस्तकबिल किसका रोशन है? इस्लाम का और मुसलमानों का। फेथ इन एक्शन, निजात के लिए मुकम्मल शरीयत पर ईमान लाना है, जिंदगी में हिदायत पाने के लिए सुन्नत के तरीकों को इख्तियार करना है। और अब बिल्कुल एंड पे जो बात शुरू में थी घरों में आने जाने की, उसी में एक और पुकार, घरों में आने जाने के लिए इजाजत तलब करना। और इस पारे की आखिरी पुकार आपके मेरे नाम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, क्या ईमान वालो, तुमसे तुम्हारी मलकियत के गुलामों को और इन्हें भी जो तुम में से बलूगत को ना पहुंचे हों, अपने आने की 3 वक्तों में इजाजत हासिल करनी जरूरी है। नमाज फजर से पहले, पर्दे का वक्त है ये, और जोहर के वक्त जबकि तुम अपने कपड़े हल्के कर लेते हो यानी कैलूला, और ईशा की नमाज के बाद यानी जो सही सोने का वक्त है। ये तीनों वक्त तुम्हारी खलवत और पर्दे के हैं। इंसान नहीं पसंद करता कि कोई दूसरा उसको ऐसे हाल में देखे जिससे उसके दिल में उसकी इज्जत ना रहे। और औलाद के दिलों में भी माँ बाप की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तो माँ बाप को बच्चों के सामने सही तरीके से बिहेव करना चाहिए। इन वक्तों के सिवा तुम पर कोई गुनाह नहीं ना उन पर, तुम सब आपस में एक दूसरे के पास बकसरत आने जाने वाले ही हो। अल्लाह ताला इसी तरह खोल खोल कर अपने अहकाम तुमसे बयान फरमा रहा है। अल्लाह ताला पूरे इल्म और कामिल हिकमत वाला है। और तुम्हारे बच्चे भी जब बलूगत यानी प्यूबर्टी की उम्र को पहुंच जाएं, तो जिस तरह इनके अगले लोग इजाजत मांगते हैं, इन्हें भी इजाजत मांग कर आना चाहिए। अल्लाह ताला तुमसे इसी तरह अपनी आयतें बयान फरमाता है। अल्लाह ताला इल्म और हिकमत वाला है। अब एक और सदेसराय जिस पे कोई नहीं गौर करता, बड़ी बूढ़ी औरतें जिन्हें निकाह की उम्मीद और ख्वाहिश ही ना रही हो, और अगर वो अपने कपड़े हल्के कर दें, कौन से? बाहर जाते हुए पर्दा, अबाया और निकाब और इसी तरह के कपड़े जो जवानी में वो बाहर पहनती थी, अगर जरा सा अपना पर्दा हल्का कर लें तो इन पर कोई गुनाह नहीं। खुश हो जाए सब 60+, हर चीज में आगे जाना चाहते हैं उम्र में नहीं। अच्छा जी, कपड़े हल्के कौन से करेंगे जो जवानी में पहनते थे? क्या दलील नहीं कि जवानी में पहनने की बाहर जाते हुए ऊपर कुछ तो तभी उतारेगी ना। यानी पर्दे की पाबंदियां आसान हो रही हैं बुढ़ापे की उम्र की तरफ जाते हुए, और आप ये बताइए कि जवानी में क्या होगा, एक बात। दूसरी बात देखिए, कौन सी औरत बूढ़ी होती है, ये कौन सी उम्र से शुरू होता है, जब लोग आपको दादी अम्मा कहें और आपको गुस्सा ना आए, ये उम्र होती है पर्दा हल्का करने की। उसमें भी शरारत है क्या, बशर्ते कि वह अपना बनाव सिंगार जाहिर करने वालियां ना हो, लाइट मेकअप भी ना करें। अल्लाह ताला ने जो कवानीन दिए हैं उसमें कितनी खूबसूरती है, आप ये देखिए बस, और क्या कहूँ। ताहम अगर इनसे भी एहतियात करें तो इनके लिए बहुत अफजल है, अल्लाह ताला सुनता और जानता है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस आयत को फिर पढ़ दूँ, पता चला पता नहीं कैसे पढ़ी है। बड़ी बूढ़ी औरतें जिन्हें निकाह की उम्मीद और ख्वाहिश ही ना रही हो, अगर वो अपने बाहर के कपड़े हल्के कर लें तो इन पर कोई गुनाह नहीं, बशर्ते कि वो अपना बनाव सिंगार जाहिर करने वालियां ना हो। ताहम अगर इनसे भी एहतियात करें तो इनके लिए बहुत अफजल है, और अल्लाह ताला सुनता और जानता है। अंधे पर, लंगड़े पर, बीमार पर और खुद तुम पर मुतलकन कोई हर्ज नहीं कि तुम अपने घरों से खा लो, या अपने बापों के घरों से खा लो, या अपनी माओं के घरों से, या अपने भाइयों के घरों से, या अपनी बहनों के घरों से, या अपने चचाओं के घरों से, या अपनी फूफियों के घरों से, या अपने मामुओं के घरों से, या अपनी खालाओं के घरों से, या इन घरों से जिनकी कुंजियों के तुम मालिक हो। चलिए अपनी पूरी फैमिली के लिए दुआ करें, सारी फूफियाँ, खालाएँ, चचियाँ जिनके भी जिक्र हैं, अल्लाह ताला उनको माफ़ कर दे, उनके मसाइल ख़त्म कर दे। अल्लाह हमारी सारी फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली के सारे जान के माल के रिस्क के मामलात को आसान कर दे, उनके बच्चों को हिदायत पे ले ले। इससे प्यारा कोई दीन है कि आपको इतना खूबसूरत खानदानी निज़ाम देता है, जिन्ना से पैदा होने वाले बच्चा ही साइड पे कैसे अमल करेगा, उसकी तो बेचारे की फूफी कौन है उसको पता ही नहीं, बाप का नहीं पता तो फूफी का कहाँ पता होगा। ये है फैमिली सेटअप, इस्लाम के सबसे स्ट्रॉन्ग फैमिली सेटअप है। अल्लाह हमें इसकी कदर की तौफीक दे, और आप अपनी दोस्तों के घरों से खाइए पिए मौज मस्ती करें, पर कुछ उनके लिए भी छोड़ आइएगा। पता चला आपने आज सूरत नूर पे अमल किया, जाके अपनी दोस्त के घर से सारा इफ्तारी का सामान उठा के ले आएंगे, तो कल वो भी करेगी क्योंकि वो भी दौरे कुरान सुन रही है। या अपने दोस्तों के घरों से, तुम पर इसमें भी कोई गुनाह नहीं कि तुम सब बैठ कर खाओ पियो या अलग अलग, बस जब तुम घरों में जाने लगो तो अपने घर वालों को सलाम कर लिया करो, दुआ खैर है जो बबरकत और पाकीज़ा, अल्लाह तला की तरफ से नाजिल शुदा। यूं ही अल्लाह तला खोल खोल कर तुमसे अपने अहकाम बयान फरमा रहा है ताकि तुम समझ लो, एक ही ख्वाहिश है तुम समझ जाओ। आप बच्चे से कहते हैं बेटा तुम समझ जाओ ना, बेटे आप समझिए आपको फायदा होगा, बेटा इस वक्त आप जो बात करें वो आपको समझ नहीं आ रही, बिल्कुल वही मोहब्बत वाला अंदाज है। ईमान से मुतल्लिक एक ही आयत 58, घरों के अंदर की पर्देदारी बहुत जरूरी है। क्या फेथ इन एक्शन, घरों और कमरों में दाखिले के आदाब और अदब का ख्याल रखना, अगर कोई अपने घर आने की इजाजत ना दे तो बुरा नहीं मनाना, घर में दाखिल होते वक्त सलाम करना। आज तो ये दौर है, अगले सालों में तो लोगों ने एक दूसरे के घरों में आना ही नहीं है। बहरहाल अब आखिर में इज्तमाही जिंदगी के असूल देखिएगा, सूरत नूर की इस खूबसूरत पैगाम पे पूरी हो रही है कि जिंदगी अकेले नहीं कटती। आयत 62 से 64, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान वाले लोग तो वही हैं जो अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर यकीन रखते हैं, और जब ऐसे मामले में जिसमें लोगों के जमा होने की जरूरत होती है नबी के साथ होते हैं, तो जब तक आपसे इजाजत ना लें कहीं नहीं जाते। जो लोग ऐसे मौके पर आपसे इजाजत ले लेते हैं हकीकत में यही हैं जो अल्लाह ताला पर और इसके रसूल पर ईमान ला चुके, बस जब ऐसे लोग आपसे अपने काम की इजाजत तलब करें तो आप इनमें से जिसे चाहें इजाजत दें और इनके लिए अल्लाह ताला से बख्शिश की दुआ करें, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ये है दीन के काम करने के असूल और जाब्ते, रूल्स एंड रेगुलेशन, बगैर पूछे नहीं जाना, और पूछे तो जिसको छुट्टी देनी है पहले उसके हालात देख कर बोलो, और जिसको नहीं देनी उसको भी बता दो। दीन के काम भी इसी असूल पे चलते हैं, और अल्लाह फिर उन सबको खिताब करें कि तुम अल्लाह तला के नबी के बुलाने को ऐसा बुलावा ना कर लो जैसा कि आपस में एक दूसरे से होता है। कैसे, तुम में से इन्हें अल्लाह खूब जानता है जो नजर बचाकर चुपके से सिरक जाते हैं, पता ही ना चले कि कब उठ कर गए। सुनो, जो लोग हुक्मे रसूल की मुखालफत करते हैं उन्हें डरते रहना चाहिए कि कहीं इन पर कोई जबरदस्त आफत ना पड़े या इन्हें दर्दनाक अजाब ना पहुंचे। आगाह हो जाओ कि आसमान और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह का है, यानी उसको तुम्हारे काम की जरूरत नहीं, उसके काम करने वाले बहुत है। जिस रविश पर तुम हो इसे बखूबी वो जानता है, और जिसने ये सब इसकी तरफ लौटाए जाएंगे وہ سنین کو ان کے کیے سے وہ خبردار کر دے گا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ ایک آیت ایمان سے متعلق 62، پلے سے باندھ لیجئے، اگر آپ کو فلاح چاہیے، کامیابی چاہیے، اور وہ کیا؟ ذاتی فوائد سے بڑھ کر اجتماعی فوائد کے لیے کام کرنا ہے، پھر انقلاب آئے گا، پھر امت مسلمہ کو خلافت ملے گی، پھر اللہ ان سے دنیا کی امامت کا کام لے گا۔ فیتھ ان ایکشن اپنے ٹیم لیڈر کے لیے زحمت نہیں رحمت بننا، یعنی کچھ لوگ آپ کا صبر ہی ہوتے ہیں، بیچارے پارے کینڈ پہ آ رہے ہیں۔ اجتماعی ذمہ داریوں میں اپنے کردار کو حق کے ساتھ نبھانا ہے، کیونکہ آپ کے سر پہ کوئی کھڑا نہیں ہوگا، یہ تو آپ اپنی عدالت میں خود جواب دہ ہوں گے۔ تو خوبصورت پیغام پہ سورت نور پوری ہوئی، اور اب آگے سورہ فرقان، بالکل چند آیتیں اس کی جو ہم پڑھ لیتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ نور کے بعد فرقان ملتا ہے، حق اور باطل کا فرق۔ آج دعا کیجئے، کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، کہنے والوں کے کہنے سے نہیں، اللہ تیری کیا مراد ہے مجھے وہ بات سمجھ آ جائے۔ اور سورہ فرقان صرف 20 آیتیں اس بارے میں، اس کی 25 سورہ، اس کا تو بس کل آپ کو دوں گی تو خوش ہوں گے۔ مین تھیم رسالت، اللہ کے نبی کی محبت، اور 19 پارے کے ساتھ اس کا ربط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی 9 آیات اللہ کی عظمت اور قدرت، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت بابرکت ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے، اسی اللہ کی سلطنت ہے، آسمان اور زمین کی اور کوئی وہ اولاد نہیں رکھتا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی ساتھی ہے، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازہ ٹھہرایا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں اپنے معبود ٹھہرا لیا، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، یہ تو اپنی جان کے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ موت و حیات کے، اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے وہ مالک ہیں۔ اور کفار نے کہا، یہ تو بس اسی کا گھڑا گھڑایا جھوٹ ہے جس پر اور بھی لوگوں نے اس کی مدد کی ہے، دراصل یہ کافر بڑے ہی ظالم اور سر سے پاؤں تک جھوٹ کے مرتکب ہیں، یعنی سر سے سر تک۔ یہ بھی کہا کیا کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے لکھا رکھے ہیں، بس وہی صبح و شام اس کے سامنے پڑے جاتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اس سے تو اس اللہ نے اتارا ہے جو آسمان و زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور انہوں نے کہا، اب ذرا اعتراضات کا ایک لمبا سلسلہ دیکھیے جو ان کی زبانوں پہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ انہوں نے کہا، یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، یعنی روزی روٹی کماتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جاتا؟ ہر دور میں لوگ دینداروں کو فرشتہ دیکھنا چاہتے ہیں، فلالیس، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ کیسے کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا بن جاتا، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا جس میں سے یہ کھاتا؟ اور ان ظالموں نے کہا کہ تم ایسے آدمی کے پیچھے ہو لیے ہو جس پر جادو کر دیا گیا، شک ڈال رہا دلوں میں کہ نہ سنو ان کی بات، خیال تو کیجئے کہ یہ لوگ آپ کی نسبت کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں، بس جس سے خود ہی بہک رہے ہیں اور کسی طرح راہ پر نہیں آ سکتے۔ تو کیا پتا چلا؟ سورہ فرقان میں آپ کو کتاب، رسول اور فرقان کا تذکرہ ساتھ ساتھ ملے گا۔ فیتھ ان ایکشن کیا ہے؟ کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس سے ہدایت لینی ہے، اور اس کے بعد پھر 10 سے 20 آیات رکو نمبر 2، جینے کے دو ہی راستے۔ یہ لفظ تبارک دیکھیے گا بار بار آئے گا اس صورت میں، تبارک الذی ان شاء اجعل لک خیرا من ذلک، اللہ تعالیٰ تو ایسا ببرکت ہے کہ اگر چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے باغات عنایت فرما دے جو ان کے کہے ہوئے باغ سے بہت ہی بہتر ہوں، جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہوں، اور آپ کو بہت سے پختہ محل بھی دے دے، یعنی مطالبے کر رہے تھے یہ ہو جائے وہ ہو جائے، کہ اللہ تو کر سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں، اور قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی بھی آگ تیار کر رکھی ہے، جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا غصے سے بپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے، اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں مشکیں کس کر پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے، ان سے کہا جائے گا آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو، یعنی موت تمہیں پھر بھی نہیں آنی۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشگی والی جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا؟ آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ جنت جو ان کا بدلہ ہے اور ان کے لوٹنے کی اصل جگہ ہے، وہ جو چاہیں گے ان کے لیے وہاں موجود ہوگا، ہمیشہ رہنے والے، ये तो आपके रब के जिम्मे वादा है जो काबिले तलब है। और जिस दिन अल्लाह ताला इन्हें और सिवाय अल्लाह के जिन्हें ये पूछते रहे इन्हें जमा करके पूछेगा, क्या मेरे इन बंदों को तुमने गुमराह किया या ये खुद ही राह से गुम हो गए? वो जवाब देंगे कि तू पाक है, तू पाक जात है, हमें खुद ही ये जेबा न था कि तेरे सिवा औरों को अपना कारसाज बनाते। बात यह कि तूने इन्हें और इनके बाप दादाओं को आसूदगियां अता फरमाई, यहाँ तक कि वो नसीहत भुला बैठे, ये लोग थे ही हलाक होने वाले। तो उन्होंने तुम्हें तुम्हारी तमाम बातों में झुटलाया, अब ना तो तुम में अजाबों के फेरने की ताकत है ना मदद करने की। तुम में से जिसने जुल्म किया हम इसे बड़ा अजाब चखाएंगे। हमने आप से पहले जितने रसूल भेजे सब के सब खाना भी खाते थे और बाजारों में भी चलते फिरते थे, और हमने तुम में से हर एक को दूसरे की आजमाइश का जरिया बना दिया। हल दस बिरोन, क्या तुम सब्र करोगे? तेरा रब सब कुछ देखने वाला है। क्या खूबसूरत मौजू है। अल्लाह के नबियों के सामने इतने आकर उजर पेश करते थे, इससे एक बात समझ आ जाती है कि माल की बुख्तार कसरत दिल से अल्लाह का खौफ निकाल देती है। और आखिरी लफ्ज वजाल ना बादकुम लिबादिन फितना अतस्बिरून, या तस्बिरून को नोट कर लें। कुछ लोग आपका सब्र होते हैं और कुछ आपको सब्र सिखा जाते हैं। अमल की बात, दाईये दीन से गैर फितरी तबक्कुआत वाबस्ता नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो भी इंसान होता है। नेमतों की बख्तात में अपने ईमान की हिफाजत करनी है, और ईमान की हिफाजत करनी है ईमान की शाखों पे अमल करके। आज 35 नंबर शाख है ईमान की, अमानतों की अदायगी उनके अहल को करना वाजिब है। कद अफलहल मोमिनून में भी पढ़ा, यहाँ भी पढ़ लीजिए। जो जिस काबिल होता है उसको वो जिम्मेदारी देनी चाहिए। किसी को मानत देना दरअसल उस पर भरोसा करना होता है। कोई मामला किसी के सपोर्ट कर देना, कोई किसी को जिम्मेदारी दे देना, फिर उससे उसका हिसाब लेना, ये सब अमानते हैं। हम सब पर तीन किस्म की अमानते हैं। वो अमानते जो अल्लाह ने दी हैं, अपने नफ्स की जिम्मेदारी, और जो हम एक दूसरे को देते हैं। इसी तरह में अपने जिस्म की हिफाजत करनी है, अपने नफ्स का ख्याल रखना है, गुनाह में नहीं डुबोना, और दूसरों के साथ तो बहुत सारे माहदे हैं उस पर भी अमल करना है। कुरान और सुन्नत में अमानत की अहमियत किसी से छुपी भी नहीं है। निसा 58, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाती इला अहलिहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी की रिवायत 34 नंबर, चार बातें जिसमें होंगी वो खालिस मुनाफिक है, और उसमें एक वो है जिसके पास अमानत रखवाई जाए और वो खयानत करे, और सबसे बदतरीन खयानत इज्तमाई माल की खयानत है। बैतुल माल हो या लोगों का माल जिससे कोई पूछ नहीं सकता, यानी हम अपने जाती माल के लिए तो केयरफुल हों और इज्तमाई माल के लिए हमें केयर ना हो। और 36 नंबर, कत्ल इंसानी की हुरमत, इस पे भी आज बात हुई, सूरत मायदा में हुई, क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता कि उसके पैदा किए हुए किसी बंदे को कोई तबाह करे। आप भी नहीं चाहते आपके किए हुए काम को कोई ख़राब कर दे। चूँकि अल्लाह ने खुद रूह फूंकी, फरिश्तों से सजदा करवाया, हर चीज़ तो कुन से बनी पर इंसान को अपने हाथ से बनाया, बेहतरीन मखलूक बनाया, तो आप उस इंसान की जान कैसे ले सकते हैं? सूरत 3, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, अल्लाह ने बेहतरीन साख पे एक बंदा पैदा किया और आप उसको मार दें। इसीलिए कत्ल पर कसास रखा गया। जानबूझकर किए गए कत्ल पर कसास क्यों है? इसलिए कि लोग एक दूसरे की जान ना लें। बुखारी की रिवायत 1654 के मुताबिक कि तुम्हारे खून भी एक दूसरे पर हराम है, जैसे कि माल और इज्जतें। और अबू दाऊद की रिवायत है 4270, जिस शख्स ने किसी मोमिन को जुल्म से नाहक कत्ल किया तो अल्लाह ताला इसकी ना कोई नफली और ना फर्जी इबादत कबूल करेगा। आज के इस पारे के एंड पे, इस पूरी इनकलाबी सूरत को जो हमने पढ़ा, इस शेर पे पूरा करूंगी, जिसमें ना हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी, रूहे उमम की हयात कश मकशे इनकलाब, सूरत शमशीर है दस्ते कदा में वो कौम, करती है जो हर जमा अपने अमल का हिसाब, नक्श है सब ना तमाम होने जिगर के बगैर, नगमा है सुदाए खाम होने जिगर के बगैर। क्या बताया इसमें शायर ने, कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई इनकलाब नहीं ना, आप कोई चैलेंज नहीं ले रहे, तो आपकी ज़िंदगी मौत है। उम्मतों की रूह में अगर आप इनकलाब की कश्मकश को निकाल दें तो वो मर जाती हैं। और तलवार की तरह है उम्मते मुस्लिमा के वो लोग जो अपना हिसाब खुद करते हैं। खूने जिगर जब तक ना दिया जाए इनकलाब नहीं आता, यही समझ लीजिए। दुआ मांगते अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तन्कुसना वकरिमना वला तुहिन्ना वातिना वला तहरिमना वासिरना वला तुसिर अलैना वर्दिना वर्दा अन्ना। अल्लाह हमको ज्यादा दे, हमें देने में कमी ना कर, और हमको इज्जत दे, हमें जलील और रुसवा ना कर, हमें अपनी नेमतों से नवाज और अपनी नवाजिशात से हमें महरूम ना रख, हमें औरों पर फजीलत दे और दूसरों को हम पर फजीलत और तवफ्फुक यानी फौकियत ना दे, और हमें राजी कर दे और अपनी बंदगी के लिए हमसे राजी हो जा। कद अफलहल मोमिनून की शुरू की 10 आयतें, उसके बारे में मुस्नद अहमद की रिवायत में ये हदीस आती है कि अल्लाह के नबी पर जो आयतें नाजिल हुई तो उसके बाद आपने ये दुआ मांगी थी, रब्बना तकबल मिन्ना इन्नक अंतस समील अलीम व तुब अलैना इन्नक अंतत तवाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरी खल्किही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। अल्लाह ताला आप सब से राजी हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।